ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी 2 दिन की कनाडा यात्रा पर सवेरे कैलगरी पहुंचे। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और निवेश से जुड़ी चर्चाओं में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मिलेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित अन्य नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।
यह प्रधानमंत्री मोदी का पिछले एक दशक में पहला कनाडा दौरा है। 2015 में उनकी पिछली यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। भारत कनाडा संबंधों को मजबूत जनसंपर्क, बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों, भारतीय छात्रों की मजबूत उपस्थिति तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की प्रचुर संभावनाओं द्वारा बल मिलता है। विश्व भर में भारतीय प्रवासियों के लिए कनाडा सबसे प्रसिद्ध बसेरों में से एक रहा और इसकी आबादी का लगभग 4.5% है। इसमें भारतीय मूल के लगभग 1.8 मिलियन कैनेडाई और 1 मिलियन अनिवासी भारतीय शामिल है। सुपर्णा साइकिया के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
G7 देशों के नेताओं ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। G7 के नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। वहीं ईरान को क्षेत्र में अस्थिरता और आतंक का प्रमुख स्रोत बताया है। G7 देशों ने क्षेत्रीय तनाव के बीच नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। ईरान और इसराइल आज लगातार 5वें दिन भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दोनों देशों में फ्लैश पॉइंट क्षेत्रों में नागरिकों को हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ईरानी सशस्त्र सेना ने इसराइल को चेतावनी दी है कि वो आने वाले घंटों में नए और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इसराइल पर भीषण हमलों का नया सिलसिला शुरू करेगा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसके मिसाइल हमलों ने इसराइल में एक सैन्य खुफिया केंद्र और मोसाद ऑपरेशन प्लानिंग सेंटर को निशाना बनाया है। दूसरी ओर इसराइल की सेना ने कहा है कि उसने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर कई बड़े हमले किए हैं। इसी से संबंधित घटनाक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान और इसराइल के बीच युद्ध विराम से कुछ बेहतर करना चाहते हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि वे वास्तव में संघर्ष समाप्त करना चाहते हैं। अमरीकी रक्षा मंत्री पेट हेक्सेथ ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सेना तैनात करने का आदेश दिया है। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा कारणों से भारतीय विद्यार्थियों को शहर से बाहर भेज दिया है। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि कुछ भारतीयों को आर्मेनिया से लगने वाली सीमा से ईरान से बाहर निकलने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पश्चिम एशिया में हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि दक्षिणी गजा में सहायता वितरण स्थल के पास इसराइली सेना की गोलीबारी में 51 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 200 के करीब घायल हुए हैं। एजेंसी के अनुसार खान यूनिस में सहायता स्थल के पास इसराइली सैनिकों ने भीड़ पर गोलीबारी की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के एक बड़े हमले में 15 लोगों की मृत्यु हो गई है और 131 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि रूस ने राजधानी कीव सहित कई शहरों पर हमले किए। मीडिया खबरों के अनुसार हाल के महीनों में कीव पर ये सबसे घातक हमला था। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के लगभग 162 डीएनए नमूनों की अब तक पहचान की जा चुकी है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने आज सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर फॉरेंसिक और कानूनी औपचारिकताओं में तेजी ला रही है। आईसीसी एक दिवसीय बल्लेबाजी महिला रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना 727 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई हैं। 28 वर्षीय मंधाना ने नवंबर 2019 के बाद पहली बार रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। पुरुषों और महिलाओं के लिए हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कल से चेन्नई में शुरू होगा। तमिलनाडु की हॉकी इकाई द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट शहर के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आंधी चलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में शुक्रवार तक आंधी और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।